नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक मंचों पर विकासशील और अल्प विकसित देशों के मुद्दे मजबूती से उठा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सभी देशों के विकास में यथासंभव योगदान देने का निरंतर प्रयास किया है। वे आज नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहाँ भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं आज लोकतंत्र को स्थिरता, गति तथा व्यापकता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है। एफआईआर हाल में कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपैक के परिसर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के संबंध में दर्ज की गई थी। न्यायालय ने कहा कि याचिकाओं के माध्यम से केंद्रीय जांच में राज्य एजेंसियों के कथित हस्तक्षेप के गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। पीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से कहा है कि शिक्षा केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का भी माध्यम है। अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 50वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थी उस समाज के ऋणी हैं जिसने उनकी शिक्षा में योगदान दिया है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी देश भर में सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अपने 70वें जन्मदिन पर लखनऊ में सुश्री मायावती ने यह घोषणा की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 52 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण कर दिया। इन माओवादियों पर कुल 1,45,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 21 महिला माओवादी भी हैं। ये माओवादी दक्षिण उपक्षेत्रीय ब्यूरो और भैरमगढ़ क्षेत्र समिति से जुड़े थे। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रत्येक माओवादियों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ईरान की मौजूदा स्थिति पर बैठक होगी। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों के और अधिकारियों की हिंसक कार्रवाई के बाद से तनाव अब भी बना हुआ है। ईरान द्वारा रात्रि में करीब 5 घंटे के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के एक दिन बाद यह बैठक हो रही है। हवाई क्षेत्र बंद होने से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा या उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि आज सुबह फिर से हवाई क्षेत्र खोले जाने के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू हो गईं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हज यात्रियों को अन्य हितधारकों द्वारा अतिरिक्त समय की मांग अनुरोध पर परामर्श जारी कर इस महीने की 25 तारीख तक अंतिम विस्तार देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में अब आगे समय विस्तार नहीं होगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी मैदान में मुंबई इंडियंस के 162 रन के लक्ष्य को यूपी वॉरियर्स ने 11 बॉल शेष रहते 3 विकेट पर हासिल कर लिया। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य सेन ने केंता निशिमोतो को हराया। एचएस प्रणय और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता से बाहर हो गए। वहीं एक दिवसीय अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला मुकाबला भारत ने अमरीका को 6 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया है। हेनिल पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमरीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए थे। भारत का अगला मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।